प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मुरारीलाल शर्मा, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ के शेष भाग की व्याख्या के लिए पुनः उपस्थित हूं। प्रथम भाग में नाना साहब के मकान की रक्षा से संबंधित मैना और सेनापति के बीच होने वाले संवादों तक पढ़ा। अब पृष्ठ 52 पर अंतिम चार पंक्तियों से पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ के इस भाग में जनरल आउटरम द्वारा नाना साहब के महल को गिराने, नाना साहब की पुत्री मैना को बंदी बनाने, उसे जलाकर भस्म करने तक का वर्णन है। तो जब मैना और सेनापति है महल को बचाने के बारे में बातचीत कर रहे थे, तभी प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ गए। अब आगे देखिए पृष्ठ संख्या 52 पर। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। तब सेनापति हे ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं इसी फिक्र में हूं। फिक्र मतलब चिंता। मुझे भी यही चिंता है कि मैं अभी तक इस महल को तोप से गिराकर नष्ट नहीं कर सका, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। सर टॉमस हे ने जनरल आउटरम से अनुरोध किया कि क्या किसी तरह नाना साहब के मकान को ध्वंस करने से बचाया जा सकता है। सेनापति हे के अनुरोध पर आउटरम ने असमर्थता जताते हुए कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। जनरल आउटरम ने सेनापति हे से कहा कि नाना के वंश, कुल, परिवार या महल पर दया दिखाना असंभव है, क्योंकि नाना साहब के विद्रोह के कारण सरकार को उन पर बहुत गुस्सा है। नाना साहब ने अंग्रेजों को बहुत परेशान कर दिया है और इतनी कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाए हैं। सरकार तो उनका नाम तक मिटा देना चाहती है, अतः उन पर, उनके परिवार के सदस्यों पर, उनके महल पर या उनकी किसी भी चीज पर दया नहीं दिखा सकती। सेनापति हे ने फिर कहा, तो लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार मतलब टेलीग्राम देना चाहिए। जब सेनापति हे आउटरम से बार बार उस मकान की रक्षा करने के लिए कह रहे थे, तो आउटरम को क्रोध आ गया और गुस्से से बोले, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। आउटरम ने हे से कहा कि आप नाना के महल को और नाना की बेटी मैना को क्यों बचाना चाहते हैं? आपका क्या स्वार्थ है? जबकि सरकार का आदेश नाना के महल को पूरी तरह ध्वंस कर देने का है, अतः उनके महल को जरूर गिराएंगे और नाना की बेटी मैना को बंदी भी बनाएंगे। ये आउटरम ने कहा और कहा, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। जब आउटरम ने सेनापति हे को दो टूक जवाब दे दिया, तो सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। भाव यह है कि सेनापति हे तो दुखी होकर वहां से चले गए। और आउटरम ने सैनिकों को साथ लेकर नाना साहब के महल को चारों ओर से फिर से घेर लिया। आउटरम ने सिपाहियों को नाना साहब के महल के अंदर जाने का आदेश दे दिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। भाव यह है कि महल का फाटक तोड़कर सिपाही जब महल के अंदर गए और वहां सब जगह मैना को ढूंढा तो मैना वहां कहीं नहीं मिली, वह गायब हो गई, कहीं छिप गई। उसी दिन संध्या समय अर्थात शाम की समय लॉर्ड केनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। जब आउटरम ने नाना साहब के मकान को घेर लिया तो उसी शाम लॉर्ड केनिंग का टेलीग्राम आया और उस टेलीग्राम में जो लिखा था उसका आशय था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो जो लॉर्ड केनिंग ने टेलीग्राम भेजा था उसमें स्पष्ट निर्देश था कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, अर्थात नाना का महल, परिवार, नाना से संबंधित वस्तुएं, इतना ही नहीं वे सारी चीजें भी जो नाना की याद दिलाएं, सब कुछ नष्ट कर दिया जाए, उनकी हर निशानी को मिटा दिया जाए। उसी क्षण मतलब उसी समय, अर्थात टेलीग्राम का संदेश पाते ही आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। इस तरह नाना साहब का राजमहल गिरा दिया गया, वह मिट्टी के ढेर में बदल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया। जब घटना घटी थी उस समय 6 सितंबर को लंदन के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र, और समाचार पत्र का नाम टाइम्स, तो टाइम्स में एक लेख प्रकाशित किया गया। उसमें लिखा गया था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार, यहां भारत सरकार शब्द प्रयोग किया, भारत सरकार से तात्पर्य उस समय भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी ओर संकेत है, कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जात का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त मतलब खून रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने अनेक अंग्रेज नर नारियों को मार डाला था। यहां उसी हत्याकांड का जिक्र है। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। अर्थात सर टॉमस हे ने जो मैना और नाना साहब के महल को छोड़ देने का अनुरोध किया था, उसी के कारण हे पर यह आरोप लगाकर उसे अपमानित किया कि हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। तो बताया कि वह क्या उन पर आरोप लगाया था, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। यह सब 6 सितंबर को लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। तो लेखिका ने बताया कि इतनी कठोर बातें उस लेख में लिखी थीं। जब जनरल आउटरम ने नाना साहब के राजमहल को ध्वंस कर दिया सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि मतलब आधी रात मध्य रात्रि के समय चांदनी रात में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रासाद, भग्नावशिष्ट का अर्थ है टूटे फूटे खंडहर और प्रासाद का अर्थ महल है, तो नाना साहब का राजमहल जो अब एक खंडहर के रूप में बदल चुका था, मैना उस महल के खंडहर के ढेर पर बैठी रो रही थी। कहने का भाव है कि नाना साहब का महल गिरने के बाद मिट्टी का ढेर बन चुका था। चांदनी रात में नाना साहब की पुत्री मैना वहां बैठकर रो रही थी क्योंकि उस महल के टूटने पर वह दुखी थी, अपनी उजड़ी हुई जिंदगी पर दुखी थी, चिंतित थी, व्याकुल थी, इसीलिए वहां बैठकर रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। तो जनरल आउटरम के सैनिकों ने मैना के रोने की आवाज सुनी तो कुछ सैनिक वहां गए और उससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? सैनिकों के प्रश्न का बालिका ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो तो बस रो रही थी। इसके बाद कराल का अर्थ है भयंकर, तो भयंकर रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। भाव यह है कि बालिका दुख में डूबी हुई थी, वह सदमे की हालत में थी। इस स्थिति में वह न तो भयभीत थी और न अपने आप में थी और न उसे कुछ सुनाई दे रहा था, इस कारण वह उत्तर देने की स्थिति में भी नहीं थी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। उस समय उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर मतलब दुखी स्वर, दुखी आवाज में मैना बोली, वह बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहां जी भरकर रो लूं। अर्थात जनरल आउटरम ने जब मैना को पहचान लिया और उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया तो मैना ने बहुत दुखी स्वर में कुछ देर वहां बैठकर रोने देने के लिए समय मांगा। आउटरम से अनुरोध किया कि उसे कुछ समय रोने दिया जाए, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। पाषाण हृदय मतलब कठोर हृदय, जिसके हृदय में जरा सी भी दया नहीं थी, इतने कठोर हृदय वाला। तो लेखिका ने कहा है कि कठोर हृदय वाले जनरल आउटरम ने मैना की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। कौन सी अंतिम इच्छा? वहां बैठकर रोने की। महल के भग्नावशेषों पर बैठकर कुछ पल रोने की उसकी जो अंतिम इच्छा थी उसे उसने पूरी नहीं होने दिया। आउटरम बहुत ही क्रूर निर्दयी स्वभाव का था। दूसरा कारण यह भी था कि यदि उसने नाना की पुत्री मैना पर किसी तरह की दया दिखाई तो उसे अंग्रेज सरकार द्वारा सजा मिलेगी, इसीलिए उसने बिना विलंब किए मैना के हाथ में हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया और फिर बिठूर से कानपुर के किले में लाकर कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। तो उन दिनों महाराष्ट्र से बाखर नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था। उस समाचार पत्र को इतिहास वेत्ता महादेव चिटनवीस प्रकाशित कराते थे। इस घटना के बारे में उसमें प्रकाशित हुआ था, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया, नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई, भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। इस तरह नाना साहब की इकलौती बेटी मैना को अंग्रेजों ने बड़ी निर्दयता से जलाकर भस्म कर दिया और जो लोग उसे देख रहे थे उन्होंने उस जलती हुई बालिका को देवी समझकर प्रणाम किया। पाठ की कथा वस्तु पूरी हुई। बच्चों आप पाठ का वाचन करना, आशा है पाठ समझ में आ गया होगा। अब कुछ प्रश्न बता रहा हूं। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, उसे किसने पूरी नहीं होने दिया? तो उत्तर है इसका, मैना की अंतिम इच्छा अपने महल के भग्नावशेषों पर बैठकर कुछ पल रोने की थी, क्योंकि वह उस महल में रहती थी, वह महल गिरकर खंडहर बन चुका था। मैना की वह इच्छा जनरल आउटरम ने पूरी नहीं होने दी, आउटरम ने मैना को गिरफ्तार कर लिया था। और एक प्रश्न, अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए कौन सा घोर अत्याचार किया था? इस तरह से अगर प्रश्न आता है और किसी भी तरह के प्रश्न आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए कौन सा घोर अत्याचार किया था? अंग्रेजों ने नाना साहब धुंधु पंत से बदला लेने के लिए नाना साहब के महल को नष्ट करने के साथ साथ उनकी बेटी मैना को भी अत्यंत क्रूरता के साथ अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया था। तो इस तरह से ये पूरा पाठ हुआ। नाना साहब की पुत्री मैना से संबंधित आप पढ़िए और जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उन्हें अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। धन्यवाद।